सत्यवचन
कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल के पुराना नियम में पाए जाने वाली पुस्तक पहला राजा का बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इससे आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को इन अध्ययनों से पाते जाइए। इससे पहले कि हम अध्ययन आरंभ करें, आइए सुन लेते हैं एक मधुर गीत।
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एवं सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इन दिनों हम पुराने नियम की पुस्तक उसके पहले राजाओं की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि ओमरी के पश्चात उसका पुत्र अहाब सिंहासन पर बैठा, जो इतिहास का सबसे बड़ा दुष्ट राजा हुआ। बुराई से बढ़कर बुराई, उसने सिदोनियों के राजा बाल के पुजारी एतबाल की पुत्री इजेबेल से विवाह की। इजेबेल एक हठी मनमानी करने वाली दुष्ट स्त्री थी जिसने इसराइल में बाल देवताओं की वेदियां स्थापित की। तब एलियाह ने आहाब के पास जाकर कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, इन वर्षों मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, और वहां से निकलकर जंगल में करीत के नाले के पास जाकर रहने लगा। जब नाले का पानी सूख गया तब वह सारपत नगर में एक विधवा के घर रहा। परमेश्वर ने उसकी और विधवा दोनों की सुधि ली और उन्हें प्रतिदिन भोजन मिलता रहा। इसके बाद अकाल की भीषणता बढ़ती जा रही थी, मवेशियों तक के लिए भोजन नहीं था। अतः आहाब अपने दीवान को लेकर चारागाह की खोज में निकल पड़ा। आहाब एक दिशा में और उसका दीवान ओबद्याह दूसरी दिशा में आगे बढ़ने लगा। तभी एलियाह ओबद्याह को मिला और कहा कि वह आहाब को संदेश दे कि एलियाह आया है, परंतु वह आहाब से डरा क्योंकि वह परमेश्वर के भक्तों की रक्षा करता था। मेरे मित्रों, एलियाह के आश्वासन देने पर कि वह अवश्य ही आहाब से मिलेगा, ओबद्याह ने आहाब को सूचना दी कि एलियाह उससे भेंट करना चाहता है। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आहाब को एलियाह की चुनौती। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, एलियाह को देखते ही आहाब ने कहा, हे इसराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इसराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिय्याह ने आहाब से कहा, मैंने इसराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है। एलिय्याह के वचनों को गलत नहीं समझा जा सकता। उनके दो अर्थ नहीं होते हैं, वे जैसे कहे जाते हैं वैसे ही होते हैं। मेरे प्रियो, इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुक्त विचारवादी कलीसिया में विभाजन के लिए रूढ़िवादी को दोष देता है, परंतु विभाजन करने वाला वास्तव में वह कौन है? एक समय था कि कलीसिया रूढ़िवादी विचारों को मानती थी। कलीसिया में विभाजन कौन लाया? किसने कलीसिया को उसकी नींव से विस्थापित किया? मुक्त विचारवादी ने मुझे दोष दिया जाता है कि मैंने अपनी कलीसिया का त्याग किया। जी नहीं, मैंने अपनी कलीसिया नहीं त्यागी। मैं प्रभु की सेवा करता हूं और आज भी कलीसियाओं में जाता हूं। मेरे मित्रों, मेरा विश्वास तो आज भी वही है जो आरंभ में था। दुर्भाग्य से मेरी कलीसिया ऐतिहासिक विश्वास से टल गई है। यह मुक्त विचारवादी की रीति है कि वह कलीसिया में उत्पन्न किसी भी समस्या का दोष रूढ़िवादी पर डाल देते हैं। मुक्त विचारवादी की कभी कोई चूक नहीं होती है। मेरे मित्रों, इसी प्रकार आहाब ने देश में उत्पन्न कष्टों के लिए एलिय्याह को दोषी ठहराया। वह एलिय्याह को उपद्रव का कारक ठहराता है। परमेश्वर का वचन भी हलचल मचा देता है। रोचक बात तो यह है कि प्रकाश आने पर चूहे अंधेरे कोने में छिपते हैं। मेरे मित्रों, एलिय्याह ने आहाब को चुनौती दी कि उसके और 450 बाल पुजारियों के मध्य एक शर्त का आयोजन किया जाए, अर्थात एक स्पर्धा। हम पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 19 पद में, अब दूत भेजकर सारे इसराइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। मित्रों, ध्यान दीजिए कि सच तो यह है कि यह स्पर्धा परमेश्वर और शैतान के मध्य की थी, जीवित परमेश्वर की उपासना और बाल उपासना के मध्य। बाहरी रूप में एक ओर आहाब, इजेबेल और 450 बाल के पुजारी थे और दूसरी ओर अकेला एलिय्याह था। एलिय्याह तो वास्तव में एक पूरी सेना के बराबर था। आइए हम आगे देखें, कर्मेल पर्वत पर परमेश्वर और बाल के पुजारी। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, तब आहाब ने सारे इसराइलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। इसराइल की प्रजा कर्मेल पर्वत पर एकत्र हुई। स्पर्धा बड़ी रोचक थी। एलिय्याह जानता था कि प्रजा के मन में क्या है। वे जीवित परमेश्वर की उपासना करने का स्वांग करते हैं, परंतु वे बाल की उपासना करते थे। उन्होंने एलिय्याह को उत्तर नहीं दिया क्योंकि वे पाप के दोषी थे। मित्रों, यह जीवन का दुचित्ता रूप है। आज ऐसी जीवन शैली परमेश्वर के लिए घृणित हो गई है। उसकी नाक में इसकी दुर्गंध आती है। अनेक विश्वासियों का दो मानी जीवन आज कलीसियाओं में अनेक विश्वासियों के अलग हो जाने का कारण हुआ है। यदि एक आम विश्वासी कलीसिया को उस तरह जान ले जिस तरह मैंने जाना है, तो मुझे संदेह है कि वह कभी कलीसिया के द्वार में कभी पांव न रखेगा। मेरे मित्रों, यदि ऐसा कोई स्थान है जहां किसी बात को स्पष्ट और सीधी किया जाए, सरल एवं निष्कपट रखा जाए, तो वह कलीसिया ही है। परंतु सच तो यह है कि अन्य स्थानों की तुलना में वही दुचित्ता बातें और व्यर्थ की बातें करता है। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 22 पद में हम पढ़ते हैं, तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। ध्यान दीजिए, एलिय्याह में जैसा मैं कहता हूँ, एलिय्याह की मनोवृत्ति थी। आज भी हम में से कुछ में यह मनोवृत्ति है। कई बार मैं भी अपनी सेवा में सोचता हूँ कि मैं ही अकेला हूँ। जब मुझे पता चलता है कि पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तानों में एक और प्रचारक है जो मुझसे भी अधिक कष्ट उठा रहा है, तब मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है और उस कीमत को मैं चुका पाता हूँ। तब मैं एलिय्याह की उस मनोवृत्ति से मुक्ति पाता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज के युग में भी मनुष्य परमेश्वर और उसके वचन के लिए जी रहे हैं। मेरे प्रियो, मुझे बोध होता है कि अनेक प्रसिद्ध प्रचारक हैं जो वास्तव में परमेश्वर के लिए खड़े नहीं होते हैं। वे संसार में समझौता कर रहे हैं, संसार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैंने एक प्रचार का संदेश सुना जो देश के एक कोने में अलग था और दूसरे कोने में अलग अर्थात विपरीत था। यदि आप एक ही संदेश पर हर जगह नहीं दे सकते तो कुछ समस्या अवश्य है, या तो संदेश के साथ या प्रचारक के साथ। मित्रों, एलिया ने इसराइल की प्रजा से कहा, एकमात्र मैं ही हूँ जो परमेश्वर के लिए खड़ा हूँ। जी हाँ, वह गलत था। वहाँ 7,000 मनुष्य थे जो पहाड़ों के पीछे छिपे हुए थे और बाल की उपासना नहीं करते थे। मैं उस समूह को अधिक मान्यता नहीं देता, परंतु उन्होंने बाल की उपासना नहीं की थी। एलिया उनके बारे में जानता भी नहीं था। यदि एलिया उस युग में रेडियो वक्ता होता तो उसे इनमें से एक का भी पत्र नहीं मिलता। उन्होंने एलिया को सहयोग नहीं दिया, और दुख की बात है कि एलिया इसराइल को संदेश और बाल पुजारियों को चुनौती देता है। हम पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 23 और 24 पद में पढ़ते हैं, इसलिए 2 बछड़े हमें दिए जाएं और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। एलिया के वचनों को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आओ हम परमेश्वर को परख कर देखें कि वह भला है या नहीं। यदि बाल देवता परमेश्वर है तो हम उसी की उपासना करेंगे, और यदि वह भला नहीं है तो हम उसे त्याग देंगे। यदि यहोवा जीवित परमेश्वर है तो हम उसे जानना चाहेंगे। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसे जानें। यद्यपि आपके मन में शंकाएं होंगी, यदि आप सच में चाहते हैं कि उसे जानें, तो वह स्वयं को आप पर प्रकट करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसे जानें। विश्वास अंधकार में हाथ मारना नहीं है, हमारा विश्वास तथ्यों पर आधारित है। आपका उद्धार इन तथ्यों पर विश्वास करने पर आधारित है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर आधारित है। मेरे प्रिय मित्रों, आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। मेरे विचार में यह धर्मशास्त्र का सबसे अधिक दर्शनीय दृश्य है। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 25 से 28 पद में हम पढ़ते हैं, और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल देवता हमारी सुन, परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठड्डा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, वह कहीं गया होगा, वह यात्रा में होगा, वह हो सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहां तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। मेरे मित्रों, बाल देवता के पुजारियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। एलिया बैठकर व्यंग पूर्वक उन्हें देखता रहा। वे बाल को पुकार रहे थे और कुछ भी नहीं हो रहा था। वे वेदी पर भी उछल कूद कर रहे थे परंतु कुछ नहीं हुआ। वे पागलों का सा व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने भावनाओं का अत्यधिक प्रदर्शन किया। वे आवेशात्मक हो गए और अंत में उन्होंने अपना शरीर काटना आरंभ कर दिया। उनका लहू बहने लगा। उन्हें विश्वास था कि लहू देकर बाल देवता कुछ करेगा। एलिया ने उनसे कहा, कहीं वह गया होगा या यात्रा में होगा, या तो हो सकता है कि वह सोता हो और उसे जगाना चाहिए। उनके प्रदर्शन का एलिया बड़ा आनंद ले रहा था। इसराइल की प्रजा देखती जा रही थी। मेरे प्रिय मित्रों, एक लोकोक्ति का श्रेय मार्टिन लूथर को है, परमेश्वर के साथ तो एक जन ही बहुसंख्यक है। वह इस कथन की सच्चाई को अनुभव से जानता था। एलिया ने भी अपने युग में इस सच्चाई को अनुभव से जाना था। उस समय उत्तरी राज्य पूरा का पूरा परमेश्वर से दूर हो चुका था। अहाब और इजबेल के राज में तो परिपूर्ण ईश्वर त्याग हो चुका था। एलिया अकेला ही खड़ा था, और यह सच है कि 7,000 इसराइलियों ने बाल के देवता को दंडवत नहीं किया था, परंतु वे पर्वतों में भाग गए थे। उनमें से एक भी एलिया के साथ नहीं था। एलिया को तो उनकी उपस्थिति का बोध भी नहीं था, जब तक कि परमेश्वर ने उसे नहीं बताया। एलिया बछड़े की उपासना के विरोध में था, और आज की स्थिति में आप कह सकते हैं कि वह कलीसियाओं में नई नैतिकता और रॉक म्यूजिक के विरुद्ध था। उसने अनेक प्रचलित प्रथाओं को अपवाद माना और बाल पुजारियों के विरुद्ध खड़ा हुआ जब उन्होंने नया विश्वास वचन लिखा और परमेश्वर के वचन के अधिकार को अस्वीकार किया, तब एलिय्याह ने उनका विरोध किया। मित्रों, डॉक्टर विल्फ्रेड फ्रैंक ने कहा कि अंग्रेजी भाषा का सबसे अधिक कड़वा शब्द है अकेला। एलिय्याह अकेला ही खड़ा रहा। मेरे मित्रों, उसने जनता की आवाज नहीं उठाई थी। वह तोता नहीं था कि सुनी हुई बात कहे। वह किसी के लिए प्रचार नहीं कर रहा था। वह नेता भी नहीं था। वह ख्याति पाने की अपेक्षा केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था। उसने जनता की प्रशंसा की अपेक्षा परमेश्वर की स्वीकृति की खोज की। वह जुलूस में जोकर नहीं था। वह परमेश्वर के लिए एक मूर्ख था। वह इस संसार रूपी जंगल में पुकारने वाले का शब्द था। उसने शैतान और उसकी सेना से अकेले ही युद्ध किया। वह बाल पुजारियों के विरुद्ध अकेला खड़ा था। एलिय्याह ने इस दर्शनीय प्रदर्शन के लिए कर्मेल पर्वत को चुना। मेरे प्रियो, कुछ वर्षों पूर्व ठीक उसी स्थान पर कुछ लोग खड़े थे। कर्मेल पर्वत से हल्फा की खाड़ी और भूमध्य सागर दिखाई देता है। यह एक लंबा पठार है और दूर में स्थित पूर्व में एस्ड्रेलोन की घाटी में मगिद्दो है। और इस दर्शनीय स्थान पर वैभवशाली एलिय्याह अकेला अलग खड़ा था। वह पृथक था। बाल पुजारियों के प्रदर्शन को देखकर वह बोर भी हो गया था। तब उसके चेहरे पर व्यंगात्मक मुस्कान दिखाई दी और आप उसकी वाणी में निंदा सुन सकते थे। उसने उपहास की कटार चलाई और उसने बाल पुजारियों का ठड्ढा किया और चुटकी ली और अंत में ठड्ढा करते हुए उन्हें एक ओर हटा दिया। हम पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 29 और 30 पद में पढ़ते हैं, वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। मेरे प्रियो, अब एलिय्याह को परमेश्वर पर निर्भर होना है। यहोवा की वेदी को जो तोड़ दी गई थी, एलिय्याह ने उसे जोड़ने में समय लगाया। यह बड़ा ही नाटकीय काम था। प्रियो, आज एकता की बात करने वाले अनेक जन हैं, परंतु हम किस आधार पर एक हो सकते हैं? आप सुनने पर तो एक नहीं हो सकते हैं। यह उस कहानी की तरह है कि एक मनुष्य अफ्रीका के जंगल से जा रहा था कि उसकी भेंट एक हाथी से हुई। हाथी ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? उस मनुष्य ने कहा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाथी ने कहा, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, आओ हम साथ चलें। आज की भीड़ के साथ एक होने की यही विधि है। आपको शून्य पर एक होना होगा। यदि आप ऐसा कर पाए तो आप सबके साथ एक हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आप एक नहीं हो सकते हैं यदि आपके पास एकत्र होने का कारण न हो कि आपको एकजुट करे। ध्यान दें, वेदी एकता का स्थल था। एलिय्याह ने उसे फिर से बनाया। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 31 से 33 पद में हम पढ़ते हैं, फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। मित्रों, ध्यान रखें कि इसराइल एक ही राष्ट्र था। इसराइल और यहूदा अलग अलग नहीं थे, या सामरिया और यरूशलेम नहीं थे। 12 गोत्र एक राष्ट्र थे, इसराइल। अतः एलिय्याह ने प्रभु के नाम में एक वेदी बनाई। तब उसने वेदी के चारों ओर एक छोटी खाई बनाई और लकड़ियां जमा कर बछड़ा काट कर उस पर रख दिया। तब उसने आदेश दिया कि 4 घड़े पानी भरकर होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दिया जाए। उसने 3 बार ऐसा ही करवाया और पानी बहकर खाई में भर गया। जल स्रोत वहां से दूर था। जब मैं कर्मेल पर्वत के बारे में सोच रहा था कि पानी लाने वाले को कितना समय लगा होगा, एलिय्याह तो जल्दी नहीं चाहता था। हम राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 34 और 35 पद में आगे पढ़ते हैं, तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। मेरे प्रिय, यहां पर हम देखते हैं कि वे एक बार पानी लाए। एलिय्याह ने कहा, एक बार और पानी लाओ। पानी पर्याप्त नहीं था, अतः एलिय्याह ने तीसरी बार पानी मंगवाया। यदि आप उस दिन एलिय्याह को देखते तो उसके चेहरे पर टेढ़ी सी मुस्कुराहट दिखाई देती। क्या आप जानते हैं कि उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट क्यों थी? उसने वेदी पर पानी क्यों डलवाया? मेरे मित्रों, केवल परमेश्वर ही चमत्कार कर सकता है। वही है जो असंभव कार्य को संभव करता है। थोड़ा सा पानी स्वर्ग से अग्नि का गिरना नहीं रोक सकता। अतः वहां पूरी तरह पानी डालने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। यदि वह 24 घंटे भी पानी डालता तो आग का गिरना नहीं रुकता। एलिया ने परमेश्वर पर निर्भर करना सीख लिया था। मेरे मित्रों, हम यह देख चुके हैं कि आपको स्मरण होगा कि जब वह करीत के नाले का पानी सूखता देख रहा था, तब वह समझ गया था कि एक नाली से बढ़कर कुछ नहीं है जिसमें से पानी का प्रवाह हो। उसने आटे के खाली पात्र को भी देखकर यह की स्तुति की। परमेश्वर ने उस विधवा और उसके पुत्र और एलिया को संपूर्ण अकाल के समय में उसी खाली आटे के पात्र से रोटी खिलाई थी। इसके बाद उसने यह भी समझा कि वह एक मृतक देह है। उसने भली भांति सीख लिया था कि यदि कुछ होगा तो परमेश्वर ही करेगा। उस दिन वह वहां खड़ा हुआ टेढ़ा टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। मेरे विचार में एलिया में विनोदी स्वभाव था, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर के स्वभाव में भी विनोदी स्वभाव है। संभव है कि एलिया ने कहा होगा, प्रभु यदि तू नहीं करेगा तो यह तो हो ही नहीं सकता है। हम आगे देखते हैं, पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 36 पद में लिखा हुआ है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इसराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। मेरे मित्रों, काश हम इस सत्य को जान ले कि यदि परमेश्वर न करे तो कुछ नहीं होगा। क्या आप एलिया की प्रार्थना समझ पाए हैं? यह धर्मशास्त्र की एक महान प्रार्थना है। यह एक लंबी प्रार्थना नहीं, एक महान प्रार्थना है। उसने प्रार्थना में कहा, हे अब्राहम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा। मेरे मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि एलिया ने याकूब के स्थान पर इसराइल कहा। इसराइल क्यों? इसराइल नाम 12 गोत्रों को नहीं, एक राष्ट्र को दिया गया था। एलिया ने अपनी प्रार्थना में यह भी कहा, आज यह प्रकट कर कि इसराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। मेरे प्रियो, आपको मुझे यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम जो कुछ करते हैं वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। ऐसा ना हो कि आप अपनी इच्छा से काम करें और फिर परमेश्वर से उस पर आशीष मांगे। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता है। यदि आपको आशीष चाहिए तो आपको उसके मार्ग पर चलना चाहिए। परमेश्वर से कुछ मांगने का अधिकार आपको नहीं है। यह सच है कि वह हमसे बहुत कुछ चाहता है, परंतु हमें उससे बलपूर्वक मांगना उचित नहीं है। वह आपके इशारों पर नहीं नाचेगा। हमें उसकी इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करना है। हमें उससे जानना है कि वह हमसे क्या चाहता है। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 37 पद में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा देता है। मेरे प्रियो, इस पद में एलिया परमेश्वर की महिमा की याचना कर रहा है। इसी प्रकार परमेश्वर का भुजबल कार्य करता है। आप जानते हैं क्या हुआ? पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 38 से 40 पद में लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड़े में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। मेरे मित्रों, यह निरशंस हत्या तो थी, परंतु ईश्वर त्याग और झूठी उपासना का अंत अवश्य हो गया। आगे हम देखते हैं वर्षा के लिए एलिया की प्रार्थना। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 41 पद में लिखा है, फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। मेरे प्रिय मित्रों, इसराइल परमेश्वर के पास आ गया तो वर्षा हुई और आशीषें भी बरसी। हम पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 42 से 45 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का सा हाथ एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला। मेरे प्रिय मित्रों, एलिय्याह एक महापुरुष था। मनुष्य यह जान ले कि अकाल प्राकृतिक दुर्घटना नहीं, प्रताड़ना का साधन था। वह उसी प्रकार अंत हुआ जिस प्रकार आरंभ हुआ था, परमेश्वर के भक्त एलिय्याह की आज्ञा पर। एलिय्याह ने कहा कि वर्षा होगी, परंतु आरंभ में तो कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं दिए, केवल नीला पानी और नीला आकाश। जब उसका सेवक 7वीं बार देखने गया, तब मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उसे दिखाई दिया। बादल तुरंत ही छाने लगे और आकाश में घने बादल छा गए और घनघोर वर्षा से सूखी भूमि तर होने लगी। हम पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 46 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। मेरे मित्रों, एलिय्याह ने अहाब से कहा कि वह तुरंत घर लौट जाए, क्योंकि नाला बाढ़ग्रस्त हो जाएगा और वह उसके पार नहीं जा पाएगा। और एलिय्याह भागा, क्यों? क्योंकि उसमें भी हमारे समान ही भावनाएं थी, वह भी तो मनुष्य ही था। मित्रों, हम देखेंगे कि वह पूरा मनुष्य ही था, फिर भी परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता था, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक चुनौती रखना चाहता हूँ कि आज आप किसकी ओर हैं? क्या उस सच्चे परमेश्वर की ओर या उस संसार के बाल देवता की ओर? आज आपको चुनना होगा कि आप किसके जन हैं। मेरे मित्र, आज अपना जीवन प्रभु को दे दें और उन आशीषों को प्राप्त कर लें जिसे परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करें। प्रभु आपकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तुझे मुझे आगे पीछे घेर।